आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
मंटो का अफसाना, मजीद का माजी। मजीद की माहाना आमदनी 2,500 रुपए थी। मोटर थी, एक आलीशान कोठी भी थी, बीवी थी, इसके अलावा 10-15 औरतों से मेल जोल था। मगर जब कभी वो विस्की के 3-4 पैग पीता तो उसे अपना माजी याद आ जाता। वो सोचता कि अब वो इतना खुश नहीं है जितना 15 बरस पहले था, जब उसके पास रहने को कोठी थी, न सवारी के लिए मोटर, बीवी थी, न किसी औरत से उसकी शनासाई थी। 2,500 रुपए तो एक अच्छी खासी रकम है। उन दिनों उसकी आमदन सिर्फ 60 रुपए माहवार थी। 60 रुपए जो उसे बड़ी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद वो खुश था। उसकी जिंदगी उफताओं खीजा हालात के होते हुए भी हमवार थी। अब उसे बेशुमार तफक्कुरात थे, कोठी के, बीवी के, बच्चों के, उन औरतों के जिनसे उसका मेल जोल था। इनकम टैक्स का डंटा अलग था, सेल्स टैक्स का झगड़ा जुदा। इसके अलावा बहुत सी उलझने थीं जिनसे मजीद को कभी नजात ही नहीं मिलती थी। चुनांचे अब वो जमाने को अक्सर याद करता था जब उसकी जिंदगी ऐसे तफक्कुरात और ऐसी उलझनों से आजाद थी। वो एक बड़ी गरीबी थी लेकिन बड़ी खुशगवार जिंदगी बसर करता था। इनकम टैक्स ज्यादा लग गया है, माहिरों से मशवर करो, ऑफिसरों से मिलो, उनको रिश्वत दो, सेल्स टैक्स का झगड़ा चुकाओ, ब्लैक मार्केट करो, यहां से जो कमाओ उसको वाइट करो, झूठी रसीदें बनाओ, मुकदमों की तारीखें भुगतो, बीवी की फरमाइशें पूरी करो, बच्चों की निगहदाश्त करो। यूं तो मजीद काम बड़ी मुस्तैदी से करता था और वो अपनी इस नई हंगामा खेज जिंदगी में रच रम गया था, लेकिन इसके बावजूद नाखुश था। ये नाखुशी उसे कारोबारी औकात में महसूस नहीं होती थी। इसका एहसास उसको सिर्फ उस वक्त होता था जब वो फुर्सत के औकात में आराम से बैठकर विस्की के 3-4 पैग पीता था। उस वक्त बीता हुआ जमाना उसके दिलो दिमाग में एकदम अंगड़ाइयां लेता हुआ बेदार हो जाता और वो बड़ा सुकून महसूस करता। लेकिन जब उसे बीते हुए जमाने की तस्वीर उसके दिलो दिमाग में महवा हो जाती तो वो बहुत मुस्तरिब हो जाता। पर यह इस्तराब देरपा नहीं होता था, क्योंकि मजीद फौरन ही अपनी कारोबारी उलझनों में गिरफ्तार हो जाता था। मजीद ने जो कुछ बनाया था अपनी मेहनतों मशक्कत से बनाया था, कोठी, उसका साजो सामान, मोटर, गरज की हर चीज उसके गाढ़े पसीने की कमाई थी। उसको इस बात का बहुत मान था कि आसाइश के जितने सामान हैं सब उसने खुद बनाए हैं, उसने किसी से मदद नहीं ली। लेकिन तफक्कुरात अब ज्यादा हो गए थे। वो जो 10-15 औरतें उसके लिए बवाले जान बन गई थी, एक से मिलो तो दूसरी नाराज होती थी, टेलीफोन पर टेलीफोन आ रहे हैं, बीवी का डर अलग, कारोबार की फिक्र जुदा, अजब झंझट था। मगर वो दिन भी थे जब मजीद को सिर्फ 2 रुपए रोजाना मिलते थे, 60 रुपए माहवार जो उसे बड़ी मुश्किल से मिले थे, मगर दिन अजीब अंदाज में गुजरते थे। बड़े दिलचस्प थे वो दिन, बड़ी दिलचस्प थी वो रातें जो लड़की के एक बंच पर गुजरती थीं जिसमें हजारहा खटमल थे, खुदा मालूम कितने उम्र रसीदा, क्योंकि वो बेंच बहुत पुरानी थी। इसके मालिक ने 10 बरस पहले उसको एक दुकानदार से लिया था जो अपना कारोबार समेट रहा था। उस दुकानदार ने 11 बरस पहले इसका सौदा एक कबाड़ी से किया था। मजीद को जो मजा, जो लुत्फ इस खटमलों से भरी हुई बेंच पर सोने में आया था, अब उसे अपने पुर तकल्लुफ स्प्रिंगों वाले पलंग पर सोने में नहीं आता था। अब उसे हजारों की फिक्र होती थी, उस वक्त सिर्फ 2 रुपए रोजाना की। उन दिनों उसके पास कैनवस के 2 बूट थे, अब सैकड़ों थे, मगर वो बात नहीं थी। हर रोज दिन के काम से फारिग होकर जब वो अपने दफ्तर के बेंच पर सोने लगता तो बूट उतारकर उस पर बिलुंक मिलता। सुबह उठकर हमाम में कन्नी देकर नहाता, शेव करता, सामने होटल में बाहर वाले से कहता कि उसका नाश्ता ले आए, एक मक्खन लगा ब्राउन, एक प्याली चाय, लुत्फ आ जाता। नाश्ता करके वो पाशिंग शो का सिगरेट पीता, एक पान खाता और काम शुरू कर देता। दोपहर का खाना वो भिंडी बाजार में हाजी के होटल में खाता। ये होटल कितना अच्छा था, खड़ी दाल घी में बघारी हुई कितनी मजेदार होती थी, खारा गोश्त तो बेहद लजीज होता था, फिर बर्फ का ठंडा ठंडा पानी, पासिंग शो का एक सिगरेट, उसका सारा वजूद हशाश बशाश हो जाता था। खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया, फिर काम शुरू कर दिया। शाम को 6 बजे फारिग हुए, एक आना ट्राम पर खर्चा और सीधे अपोलो बंदर पहुंच गए। ठंडी हवा, भात भात के आदमी, भात भात की बोलियां, बड़ी बड़ी आलिशान इमारतें, वसीओ अरीज समंदर, ऊंची ऊंची लहरें, कश्तियां, मोटरें, साइकिलें, खूबसूरत औरतें, मरहटी औरतें जो अपने चमकीले जूड़ों पर फूलों की वेनी लगाई थी, पारसी औरतें, यहूदी औरतें, तीखी तीखी नाक वाली एंग्लो इंडियन और यूरोपियन औरतें, ये सब उसके पास से गुजरती, उनको देखता तो उसके दिलो दिमाग को फरहत पहुंचती। उसको कभी ये ख्वाहिश ना होती कि कोई उसकी हो जाए, लेकिन अब बीवी के अलावा 10-15 औरतों से उसका जिंसी मेल जोल था। अब वो हर खूबसूरत औरत को शहवानी नजरों से देखता था, तरकीबें सोचता कि किस तरह इनको हासिल किया जाए। अब भी वो सैर करता था, बागों में घूमता था, मगर फूल इतने खूबसूरत दिखाई नहीं देते थे जितने कि उस जमाने में दिखाई देते थे। अब सैकड़ों फूल उसके गुलदानों में पड़े रहते थे जो मुरझा जाने पर फेंक दिए जाते थे। उसकी निगाह उन पर पड़ती ही नहीं थी, पड़ती भी होगी तो वो उनमें कोई कशिश महसूस नहीं करता था। एक दिन अपोलो बंदर गए, दूसरे दिन चौपाटी चले गए, दही बड़े और चाट खाई, गीली रेत पर बैठे समुद्र का नजारा करते रहे। दूर हदे निगाह तक फैला समंदर, धूप में चांदनी की तरह चमकती हुई लहरें, कश्तियों में सफेद सफेद बादबान, यहां से जी उकताया तो मालाबार हिल चले गए। हैंगिंग गार्डन्स कैसा फरहत बख्श मकाम था। उस जमाने में उसका कोई दुश्मन नहीं था, उसको सारी दुनिया दोस्त नजर आती थी। ट्राम उसकी दोस्त थी, खुला आसमान उसका दोस्त था, सड़कें और फुटपाथ उसके दोस्त थे। खटमलों से भरी बेंच पर सोने से पहले वो फुटपाथ पर सोया करता था, हर चीज उसको अपनी महसूस होती थी, मगर अब अपने भी पराए लगते थे। सैकड़ों हरीफ थे कारोबार में, इश्कबाजियों में, हर जगह हर मुकाम पर उसका कोई ना कोई हरीफ मौजूद होता था। वो जिंदगी अजीबो गरीब थी, ये जिंदगी भी अजीबो गरीब थी, मगर दोनों में जमीनों आसमान का फर्क था। वो तफक्खुर से आजाद थी, ये तफक्खुर से पुर। छोटी से छोटी खुशी उसके दिलो दिमाग में एक अरसे तक मौजूद रहती, एक अरसे तक उसको शादाओं फरा रखती। 6 आने देकर एक मील टैक्सी में बैठे तो ये एक बहुत बड़ी अय्याशी थी। भिखारी को एक पैसा दिया तो बड़ी रूहानी मसरत महसूस की। अब वो सैकड़ों की खैरात करता था और कोई रूहानी मसरत महसूस नहीं करता था, इसलिए कि ये महज नुमाइश की खातिर होती। उस जमाने में उसकी अय्याशियां बड़ी छोटी छोटी मगर बड़ी दिलचस्प होती थी। खुद को खुश करने के लिए वो बड़े निराले तरीके ईजाद कर लेता था। इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठे और किसी गांव में जाकर ताड़ी पीने लगे, पतंग लिया और चौपाटी पर बच्चों के साथ उड़ाने लगे। दादर स्टेशन पर सुबह सवेरे चले गए और स्कूल जाने वाली लड़कियां ताड़ते रहे। पुल के नीचे खड़े हो गए, एंग्लो इंडियन लड़कियां स्कर्ट पहने ऊपर चढ़ती तो उनकी नंगी टांगे नजर आती। इस नजारे से उसको बड़ी तिफलाना सी मसरत महसूस होती। कभी कभी तवील फासले पैदा तय करता, घर पहुंचता तो उसे खुशी होती कि उसने कन्नी या दुवन्नी बचा ली है। ये कन्नी या दुवन्नी वो किसी ऐसी चीज पर खर्च करता जो उसके रोजाना प्रोग्राम में नहीं होती थी। किसी लड़की को मोहब्बत भरा खत लिखा और जो पता दिमाग में आया लिखकर पोस्ट कर दिया और इस हमाकत पर दिल ही दिल में खूब हंसे। एक उंगली का नाखून बढ़ा लिया और उसकी दुकान से टेस्ट करने के बहाने उस पर क्यूटेक्स लगा लिया। एक दिन सिर्फ दूसरे से मांग मांग के सिगरेट पिए और बेहद शरारत भरी खुशी महसूस की। दफ्तर में बेंच के खटमलों ने ज्यादा तंग किया तो सारी रात बाजारों में घूमते रहे और बजाय गोफ्त के राहत महसूस की। जेब में पैसे कम हुए तो दोपहर का खाना गोल कर दिया और ये महसूस किया कि वो खा चुका है। अब ये बात ही नहीं थी, दफ्तर से उसने रुपए कमाने के ढंग सीखे, दौलत आने लगी तो ये सब बातें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। उसकी नन्ही नन्ही मसरतें सब सोने और चांदी के नीचे दब गईं। अब रक्सो सरोद की महफिलें जमती थी, मगर उनसे वो लुत्फ हासिल नहीं होता था जो पुल के नीचे खड़े होकर एक खास जाविये से नंगी मुतहर्रिक टांगे देखने में महसूस होता था। उसकी रातें पहले बिल्कुल तन्हा गुजरती थी, अब कोई ना कोई औरत उसकी आगोश में होती, मगर वो सुकून गायब था, वो कुवारा सुकून जिसमें वो रात भर मलफूफ रहता था। अब उसे ये फिक्र दामनगीर होती थी कि कहीं उसकी बीवी को पता ना चल जाए, कहीं ये औरत हामिला ना हो जाए, कहीं उसको बीमारी ना लग जाए, कहीं उस औरत का खाविंद ना आधम के। पहले ऐसे तफक्कुरात का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब उसके पास हर किस्म की शराब मौजूद रहती थी, मगर वो मजा, वो सुरूर जो उसे पहले हर रोज शाम को जापान की बनी हुई अब ही बियर पीने में मजा आता था बिल्कुल ही गायब हो गया था। उसका मामूल था कि दफ्तर से फारिग होकर चौपाटी या पोलो बंदर की सैर की, खूब घूमे फिरे, नजारों का मजा लिया, 8 बजे तो घर का रुख किया, किसी नल से मुंह धोया और बाई खल्ला पुल के पास वाली बार में दाखिल हो गए। पारसी सेठ की जो बहुत ही मोटा और उसकी नाक बड़ी बेहंगम थी, साहब जी कहा, काम सेठ सुहाल छे, उसको बस सिर्फ इतनी गुजराती आती थी, मगर जब वो कहता तो उसे बड़ी खुशी होती कि वो इतने अल्फाज बोल सकता है। सेठ मुस्कुराता और कहता, सारू छे सारू छे। फिर वो पारसी सीट के काउंटर के पास खड़े होकर जंग की बातें छेड़ देता। थोड़ी देर के बाद यहां से हटकर वो कोने वाली मेज के पास बैठ जाता। ये उसकी महबूब मेज थी। उसके ऊपर का हिस्सा संगमरमर का बना था। बैरा उसे गीले कपड़े से साफ करता और मजीद से कहता, बोलो सेठ। ये सुनकर मजीद खुद को वाकई सेठ समझता। उस वक्त उसकी जेब में 1 रुपए 4 आने होते। वो बैरे की तरफ देखकर बड़ी शान से मुस्कुराता और कहता, हर रोज तुम मुझसे पूछते हो, सब जानते हो, ले आओ जो पिया करता हूं। बैरा अपनी आदत के मुताबिक जाने से पहले गीले कपड़े से मेज साफ करता, पोंछकर एक गिलास रखता, एक प्लेट में काबुली चने, दूसरी में खारी सींग यानी नमक लगी मूंगफली लाता। मजीद उससे कहता, पापड़ लाना तुम हमेशा भूल जाते हो। ये चीजें गजक के तौर पर बियर के साथ मुफ्त मिलती थी। मजीद ने यह तरीका ईजाद किया था कि बैरे से काबुली चनों की एक और प्लेट मंगवा लेता था। चने काफी बड़े बड़े होते थे, नमक और काली मिर्च से बहुत मजेदार बन जाते थे, मूंगफली की प्लेट होती थी। ये सब मिल मिलाकर मजीद का रात का खाना बन जाते थे। बियर आती तो बड़े पुरसुकून अंदाज में उसको गिलास में उड़ेलता, आहिस्ता आहिस्ता घूंट भरता। ठंडी यख बियर उसके हलक से उतरती तो एक बड़ी अजीब फरहत उसको महसूस होती। उसको ऐसा लगता कि सारी दुनिया की ठंडक उसके दिलो दिमाग में जमा हो गई है। वो मोटे पारसी की तरफ देखता और सोचता, ये पारसियों की नाक क्यों इतनी मोटी होती है? इस कौम ने क्या कसूर किया है कि खुदा उनकी नाकों से बिल्कुल गाफिल है? परसों ट्रेन में जो पारसिन बैठी थी, बड़ा सुडौल बदन, खूबसूरत आंखें, उभरा हुआ सीना, बेदाग सफेद रंग, माथा कुशादा, पतले पतले होंठ, लेकिन ये बड़ी तोते ऐसी नाक, उसकी देखकर मजीद को बहुत तरस आया था। उसने सोचा था कि आया ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि उसकी नाक ठीक हो जाए। फिर उसके दिमाग में मुख्तलिफ औकात पर देखी हुई खूबसूरत और जवान लड़कियां तैरने लगती थी। उसको ऐसा लगता था कि वो उनका शबाब बियर में घोलकर पी रहा है। देर तक वहां बैठा वो उसकी जिंदगी के हसीन लम्हात दोहराता रहता। 15 दिन हुए अपोलो बंदर पर जब तेज हवा में एक यहूदन लड़की का रेशमी स्कर्ट उठा तो कितनी मुतनासिब और हसीन टांगों की झलक दिखाई दी थी। पिछले इतवार ईरानी के होटल में पाए का शोरबा कितना लजीज था, कैसे चटखारे लेकर उसने उसमें गर्म गर्म नान भिगो कर खाया था। रंगीन फिल्म कितना अच्छा था, रक्स कितना दिल फरेब था उन औरतों का। आज सुबह नाश्ते के बाद सिगरेट पीकर लुत्फ आ गया, ऐसा लुत्फ हर रोज आया करे तो मजा आ जाए। वो मियां बीवी जो उसने दादर स्टेशन पर देखे थे आपस में कितने खुश थे, कबूतर और कबूतरी की तरह गुटक रहे थे। केकी मिस्त्री बड़ा आदमी है, कल मैंने स्प्रो मांगी तो उसने मुफ्त दे दी, कहने लगा, इसके दाम क्या लूंगा आपसे। पिछले माह उसने वक्त पर मेरी मदद भी की थी, 5 रुपए उधार मांगे फौरन दे दिए और कभी तकाजा ना किया। ट्रेन में जब मैंने उस रोज मरहटी लड़की को अपनी सीट दी तो उसने कितनी प्यारी शुक्रगुजारी से कहा था, थैंक यू। फिर वो मोटे पारसी की तरफ देखता, उसके चेहरे पर ये बड़ी नाक उसको नजर आती। मजीद फिर सोचता, ये क्या बात है, इन पारसियों की नाकों के साथ इतना बुरा सलूक किया गया है, कितनी कोफ्त हो रही है इस नाक से। फौरन ही उसे ख्याल आता कि ये पारसी बड़ा नेक आदमी है, क्योंकि वो उसको उधार दे देता था। जब उसकी जेब में पैसे ना होते तो वो काउंटर के पास जाता और उससे कहता, सेठ आज माल पानी नहीं है, कल। सेठ मुस्कुराता, कोई वांदा नहीं, यानी कोई हर्ज नहीं, फिर आ जाएंगे। बियर की बोतल 14 आने में आती थी। उसको खाली करके और प्लेटें साफ करके वो हाथ के बड़े खूबसूरत इशारे से बैरे को बिल लाने के लिए कहता। बैरा बिल लाता तो वो उसे 1 रुपया देता और बड़ी शान से कहता, बाकी 2 आने तुम अपने पास रखो। बैरा सलाम करता, मजीद बेहर मसरूर और शादमा उठता और पारसी सेठ को साहब जी कहकर दफ्तर की तरफ रवाना होता। वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए पड़ोस की गली में एक छोटी सी तारीख खोली में मिस लीना रहती थी। किसी जमाने में बड़ी मशहूर डांसर थी मगर अब बूढ़ी हो चुकी थी। यहूदन थी। उसकी दो लड़कियां थी, ईस्थर और हेलेन। ईस्थर 16 बरस की थी और हेलेन 13 बरस की। दोनों रात को अपनी माँ के पास एक लंबा कुर्ता पहने लेटी होती थी। सिर्फ एक पलंग था। मिस लीना फर्श पर चटाई बिछाकर सोती थी। रात को बियर पीकर मिस लीना के यहाँ जाना मजीद का मामूल बन गया। वो बाहर होटल वाले को 3 चाय का ऑर्डर देकर गली में दाखिल होता और मिस लीना की खोली में पहुंच जाता। अंदर टिन की कुप्पी जल रही होती। ईस्थर और हेलेन करीब करीब नीम बरहना होती। मजीद पहुंचता तो जोर से पुकारता, अस्सलाम वालेकुम। माँ बेटियां ठेठ अरबी लहजे में वालेकुम अस्सलाम कहती और वो लोहे की कुर्सी पर बैठ जाता और मिस लीना से कहता, चाय का ऑर्डर दे आया हूं। ईस्थर बारीक आवाज में कहती, थैंक यू। छोटी बिस्तर पर लोटे लगाना शुरू कर देती। मजीद को उसकी आड़ू वाड़ू जितनी छातियों और नंगी टांगों की कई झलकियां दिखाई देती जो उसके मसरूर और मखरूर दिमाग को बड़ी फरहत बख्शती। बाहर वाला चार लेकर आता तो माँ बेटियां पीना शुरू कर देती। मजीद खामोश बैठा रहता। उस तंगोतार माहौल में एक अजीबो गरीब सुकून उसको महसूस होता। वो चाहता कि उन तीनों का शुक्रिया अदा करे, इस धुआं देने वाली कुप्पी का भी शुक्रिया अदा करे जो धीमी धीमी रोशनी फैला रही थी। वो लोहे की उस कुर्सी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता था जिसने उसको नशिस्त्र पेश की हुई थी। थोड़ी देर वो माँ बेटियों के पास बैठता। दोनों लड़कियां खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती मजीद की आंखों में बड़ी प्यारी नींद ले आती। रुखसत लेकर वो उठता और झूमता जामता अपने दफ्तर पहुंच जाता और कपड़े बदलकर बेंच पर लेटता और लेटते ही खुशगवार और पुरसकून नींद की गहराइयों में उतर जाता। फुर्सत के औकात में विस्की के 3-4 पैक पीकर जब मजीद उस जमाने को याद करता तो कुछ अरसे के लिए सब कुछ भूलकर उसमें महवा हो जाता। नशा कम होता तो वो ब्लैक मार्केट के मुतालिक सोचने लगता, रुपया कमाने के नए ढंग तखलीक करता, उन औरतों के मुतालिक गौर करता जिनसे वो जिनसी रिश्ता कायम करना चाहता था। मजीद का माजी जंग से पहले ही फिजा में गुम हो चुका था। एक मध्यम लकीर सी रह गई थी जिसको मजीद अब दौलत से पीट रहा था।